को याद किए जा, मुश्किल को आसान किए जा, प्यारे पिता को तू याद किए जा, प्यारे पिता को तू याद किए जा, जीवन चमन आबाद किए जा, परम पिता को याद किए जा, मुश्किल को आसान किए जा।
कर है दुआ के बिना हर दवा बेअसर है,
दुआओं से जीता है वो बेफिकर है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है,
सेवा से सबकी दुआएं लिए जा, सेवा से सबकी दुआएं लिए जा,
जीवन चमन आबाद किए जा, परम पिता को याद किए जा, याद किए जा, याद किए जा।
ओम शांति। आप सभी दिल वालों का शांतिवन की तपोभूमि के अंदर इस संस्था की है आदरणीय दादी जानकी जी की तरफ से, अन्य वरिष्ठ दादियां, हमारे अन्य वरिष्ठ भ्राता और सभी शांतिवन निवासी, मधुबन निवासी, हॉस्पिटल निवासियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। नुमा शाम की ये वेला है और आज शाम की ये वेला आप सबके जीवन के अंदर एक नई दिशा की तरफ ले जाएगी, एक नई सोच आपके जीवन में लेकर आएगी। वो आप आज के दिन से महसूस भी कर रहे होंगे। आदरणीय राजयोगी भ्राता भोपाल भाई जी, आप सभी तालियां बजाएं प्लीज। डॉक्टर कांवल कमल, कमल डॉक्टर गुप्ता, अब स्वागत सत्र को थोड़ा विराम देकर हमारे जो पुराने सीएडी के पेशेंट हैं, दिलवाले जो हैं, आपके सामने उनका अनुभव रखा जाएगा। यहाँ कौन कौन भाई बैठे हैं? हाँ जी, आप आए।
आदरणीय गोपाल भाई जी, हमारे प्यारे सतीश गुप्ता साहब, बहन जी और आप सब यहां आए हुए सभी भाइये, बहने, माताएं, नूने, बच्चे, मैं दिसंबर 2005 में यहां ये स्वर्ग भूमि में आया था पहली बार आया था। मेरा नाम कांतिलाल वाघेला है, मैं अहमदाबाद से हूं और मुझे दिलवाला बनके यहां आना पड़ा था। उस टाइम पर मेरी हालत बहुत ही नाजुक थी क्योंकि हार्ट अटैक जो था वो सीवियर था। रात को 3 बजे आया था और अनकॉन्शियस था। उसके बाद एंजियोग्राफी करवाई, डॉक्टर ने ऐसा बोला कि आपको तुरंत ही एंजियोप्लास्टी या बाईपास करना पड़ेगा, आपकी 2 जो नली है वो 99% ब्लॉक है और एक 70% ब्लॉक है, तो तीनों नलियां ऐसे ब्लॉक हैं और छोटे छोटे क्लॉट्स भी हैं, तो आपको जल्दी से जो बाईपास नहीं करवाया तो आपको खतरा है, हम आपको बचा नहीं पाएंगे। बाद में वहां के जो 2-4 और डॉक्टर साहब मिले वो मुझे पहचानते थे, मैं उनको अच्छी तरह से पहचानता था, तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप यहां नजदीक में जो ब्रह्मा कुमारी राजयोग सेंटर है वहां जाइए और उसके बाद आपको जो भी करवाना है करवाना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने सोचा कि हाँ चलो चलते तो हैं, पहले तो कुछ सुना नहीं होता है, देखा नहीं होता है, तो मैं वहां वेजलपुर में हमारा जो सेंटर चल रहा है वहां पे गया। वहां की बहनें बहुत अच्छी थी, उन्होंने मुझे प्यार से प्रेम से बिठाकर सब कुछ मेरा जो बातें थी सुनी। उसके बाद बोला कि आप राजयोग का आज से ही शुरू कर दो। मैंने बोला जरूर मैं शुरू कर देता हूं। तो 7 दिन मैंने वहां राजयोग वो सेंटर पे किया तो मुझे बहुत ही बदलाव महसूस होने लगा। ऐसा होने लगा कि ये संसार क्या है और हम कहां हैं, ये क्या हो रहा है सब। बाद में डॉक्टर साहब का कांटेक्ट के लिए सेंटर से लेटर यहां आया और डॉक्टर साहब ने शिविर में बुलाया। शिविर में आने के बाद तो हमारा जीवन बिल्कुल चेंज हो गया, जैसे कि हम बहुत ही गुस्सा करते थे, हम व्यसन करते थे।
आप क्या काम करते थे पहले?
मैं गुजरात सरकार में विजिलेंस डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर में हूं और हमारा काम भी ऐसा ही रहता है। तो उस टाइम पर मैं बहुत ही ऐसा व्यसनी और ये क्रोध ऐसा सब रहता था, मोह माया भी बहुत थी और उसकी वजह से क्या था, स्ट्रेस बॉडी पर ज्यादा आता था। हम जो खाना खाते थे उसका भी इफेक्ट होता था, हमारा जो स्ट्रेस उसका भी इफेक्ट होता था और हम उसके बारे में क्योर नहीं करते थे, कुछ भी करते नहीं थे।
खाना क्या था आप? खाना पीना पे क्या?
हाँ,
था
खाना पीना में भी क्या अनियमित होते थे। सुबह में 8-9 बजे उठना और जो भी नाश्ता बनाया था ठीक है, नहीं तो वहां ऑफिस जाएंगे तो ऑफिस वाले जो लेके आएंगे बाहर से वो नाश्ता कर लेना और दोपहर को भी कुछ खाना पीना बाहर, रात को कुछ पार्टियां हो जाए, तो ऐसा सब कुछ होता था। ये दिसंबर 2005 से पहले। उसके बाद यहां आने से इतना बदलाव हुआ कि मैं वापस जब घर गया, यहां फैमिली के साथ आया था, तो घर गया तो उसके बाद सब ये बातें छूट गई। हमारे जो फ्रेंड्स थे वो लोग बहुत फोन करने लगे, अरे यार क्या हुआ है आपको, कुछ आपके ऊपर किस वशीकरण कर दिया है क्या, आपके ऊपर कुछ डाल दिया है क्या, या आपको कुछ कर दिया है, नहीं तो आप क्या यार शेर जैसे आदमी अभी इतने ऐसे हो गए, आपके मुंह से कोई गंदी बात नहीं, क्रोध नहीं निकलता है। तो मैंने बोला क्या वही करना है, वही संसार है, तो कोई बात नहीं आप वो करो, मुझे नहीं करना है। बाद में मैंने सब कुछ छोड़ के सेंटर पे जाता था, मुरली हर रोज सुनता था, अमृत वेला टाइम टू टाइम करता था और डॉक्टर साहब ने जो बताया हुआ प्रोग्राम जो है उसको फॉलो करता था। कभी कभी शुरुआत में थोड़ा ऐसा अनियमित होता था मगर बाद में धीरे 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 संपूर्ण फॉलो हो गया। डॉक्टर साहब जो ये प्रोग्राम बता रहे हैं उसमें एग्जैक्ट जो अपन फॉलो करते हैं तो उसका 100% रिजल्ट मिलता है, उसका मुझे प्रमाण मिला है। यदि उसमें अनियमितता रहती है, थोड़ी सी गड़बड़ रहती है, तो जितना एग्जैक्ट टाइम पे अपने को क्योर होना है वो नहीं हो सकता है। थोड़ा टाइम लगता है, होता तो है मगर थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ आने के बाद एक महीने में भी अपनी पूरी जो आर्टरीज है ब्लॉकेज खुल गया है, ऐसा भी एग्जाम्पल है, क्योंकि उन्होंने वो प्रोग्राम को पूरा फॉलो किया है। मैंने भी धीरे धीरे उसको पूरा फॉलो कर दिया, तो आज उस टाइम पर मैं एक आधा किलोमीटर किलोमीटर बराबर नहीं चल पाता था, दौड़ नहीं सकता था, कोई माउंटेन पे चढ़ना हो तो नहीं जा सकता था, तो ये आज सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सेल्फ गाड़ी नहीं चला सकता था, आज मैं अहमदाबाद से गाड़ी चला के यहाँ आबू तक आ सकता हूँ, कहीं पे भी जा सकता हूँ। उसकी एक वजह मुझे ज्यादा से ज्यादा जो लगी वो ये है कि मेंटली जो स्ट्रेस आता था वो सब ये गंदी चीजों से, गंदी बातों से हमने मुंह मोड़ लिया, उसकी वजह से हुआ, और वो ज्ञान मुझे यहां से मिला। इसलिए मैं जो बाबा को प्रार्थना करता हूं कि जो भी आपने ये हमारे को अच्छा जीवन दिया है, नया जीवन दिया है, उसको और भी अच्छा बना के आपके वहां हमको ले जाओ, बस वही हमारी प्रार्थना है। आप सबको भी मैं विनती करता हूं कि ये प्रोग्राम को आप पूरा फॉलो करके आप भी अच्छे बनेंगे।
धन्यवाद जी। अभी आपने प्रत्यक्ष अनुभव सुना है, ये जो सीएडी का ये प्रोग्राम जो है ये बहुत एक होमली प्रोग्राम है। आप देखेंगे इसमें कोई फॉर्मेलिटी आप नहीं पाएंगे, और यहाँ का वातावरण भी बहुत शुद्ध है, भोजन भी आपको शुद्ध मिलेगा, एक शुद्ध लाइफस्टाइल क्या होता है वो आप यहाँ पर सीख कर जाएंगे। तो आप किसी छोटी छोटी दूसरी बातों पर विचार ना करें कि ये प्रोग्राम कैसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो अब फिर से स्वागत की ओर जाते हैं, और आप सभी का स्वागत अभी मधुर बोल के साथ, गीतों के साथ किया जाएगा, भानु भाई और उनका ग्रुप।
ओम शांति। वैसे तो आप सभी कुछ कल से आए हैं, कुछ आज से आए हैं, और यहाँ आते ही आप सब के चेहरे खिले हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे बहुत खुश लग रहे हैं, है ना सभी, इसकी मुबारक हो सबसे पहले आप लोगों को। और आते ही आप सब ने महसूस किया होगा कि ये घर आपका है, महसूस किया सबने, तो दिल तो अभी खुल गया है पहले से ही, इसकी भी मुबारक हो आप सबको। और अभी हमारे बीच में गुप्ता जी को भी बधाई, जिन्होंने इस सेवा के निमित्त बन करके बाबा के कार्य को इतने इस मुकाम तक पहुंचाया, इसलिए गुप्ता जी के लिए एक बार जोरदार ताली उनके लिए। और अभी स्वागत की इस कड़ी में दादियों के तरफ से, बाबा के तरफ से, गुप्ता जी के तरफ से आप सबको बहुत बहुत विशेष अभिनंदन है। आपके अपने ही घर में कुछ हमारे, वैसे तो अभी हमारे बीच में हमारे पूरे संगीत का जो ग्रुप है उसमें से हमारे कुछ भाई अभी है नहीं, तो ये समझ लो कि जैसे हमारी बाला बहन ने कहा कि होमली प्रोग्राम है, और ये होमली स्वागत है आप सबका, अपने घर में आपका स्वागत है, है ना। तो अभी स्वागत है आप सबका, ये आवाज देंगे। दिल वाले देते जवाब दिल के सभी सवालों का, दिल वाला के दर पे स्वागत है सभी दिल वालों का। दिल को वही संभालेगा, दिल में अपने पालेगा, दिल दे दो दिल वाले को प्यारे ऊपर वाले को। दिल वाले पधारे अपने घर में, देख बाबा हर साए वतन में। दिल वाले पधारे अपने घर में, देख बाबा हर साए वतन में, देख बाबा हर साए वतन में। दिल वाले पधारे अपने घर में, देख बाबा हर साए वतन में। कहते आओ मेरे प्यारे बच्चे,
बसा लेना मुझे अपने दिल में, बसा लेना मुझे अपने दिल में।
दिल वाले पधारे अपने घर में,
देख बाबा हर्षाए वतन में।
कहते आओ मेरे प्यारे बच्चे,
बसा लेना मुझे अपने दिल में, बसा लेना मुझे अपने दिल में।
बार बार आए दिल में खुशियाँ भर लीजिए, बाबा दिल लगा कर अपना जीवन सवारिए।
बार बार आए दिल में खुशियाँ भर लीजिए,
बाबा में
दिल लगा के अपना जीवन सवारिए।
खुश मिजाजी हो रहना जहाँ में,
गम भी गायब तब होगी जीवन में, गम भी गायब तब होगी जीवन में।
दिल वाले पधारे अपने घर में,
देख बाबा हर्षाए वतन में, देख बाबा हर्षाए वतन में।
प्यार के धागों में परम पिता को बांधिए,
सर्वशक्तियों की किरणें दिल में समाइए। स्नेह प्यार के धागों में परम पिता को बांधिए, सर्वशक्तियों की किरणें दिल में समाइए।
एहसासों की ये वर्षा करके अपने तन मन की बगिया में डाले,
अपने तन मन की बगिया में डाले।
दिल वाले पधारे अपने घर में,
देख बाबा हर्षाए वतन में।
कहते आओ मेरे प्यारे बच्चे,
बसा लेना मुझे अपने दिल में, बसा लेना मुझे अपने दिल में, बसा लेना मुझे अपने दिल में, बसा लेना मुझे अपने दिल में।
ओम शांति।
अभी आप सभी का स्वागत। हमारे यहाँ एक डिवाइन पब्लिक स्कूल है, उस स्कूल के बच्चे और बच्चियां डांस के द्वारा करेंगी। बहुत सुंदर उनके गीत के बोल हैं, ईश्वर की पुकार।
जीवन सुकून चाहे, चाहत मिले वफा माने, हालात बदल जो दे चुके फिर अंधेर न हो मालिक। तू ही सहारा,
इस तेरे सहारे
नहीं कोई हमारा।
भरोसा, उन्हीं के सहारे हमें अपने सभी कष्टों को दूर करना है। जैसे बच्चों को विश्वास, भले वो अबोध हैं, लेकिन प्रार्थना तो है ना, तो हमारे दिल से भी परमात्मा के लिए यही बोल निकले। अब बहुत सारी डिग्रियां लिए हुए मेंबर्स हैं, कई संस्थाओं के रह चुके हैं। हम सबके बीच डॉक्टर विद्याधर कंवलकर जी हैं, आप भोपाल से पधारे हैं, आप प्रोजेक्ट ऑफिस रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल भोपाल के प्रोजेक्ट ऑफिसर रहे हैं, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेल्थ एंड न्यूट्रिशंस भोपाल और नेशनल न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया हैदराबाद के भी मेंबर हैं, आप एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ वर्ल्ड सोयाबीन कमेटी के भी मेंबर हैं। काफी वर्षों से आप राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं, पिछले साल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें आप यहां पधारे थे और सेकेंड टाइम है ये इनका जो हम सबके बीच उपस्थित हैं। तो आपके हमारे दिल वालों के लिए क्या शुभ प्रेरणाएं हैं हम सुनेंगे।
परमपिता परमात्मा शिव बाबा के प्रिय दादी जी, दादी दादियों, भाई साहब, आदरणीय डॉक्टर गुप्ता साहब और परम आदरणीय बहन जी बालाजी, शिव बाबा की कृपा से ही मजा मेरा यहाँ आना हुआ है। मुझे प्रेरणा दी ही बाबा ने कि इस प्रोग्राम में आना चाहिए। डॉक्टर गुप्ता साहब का संदेश मिला, मैं तुरंत उसका पालन करते हुए यहाँ हाजिर हो गया। ये बाबा की कृपा है, हमारे कृपा से कुछ चल नहीं सकता, उसी परमात्मा की सब कृपा होती है, शिव बाबा की कृपा है, इसके वजह से सब आप दिलवाले बीमार होके, हार्ट के बीमार न होके यहाँ दिलवाले बन गए हैं। जैसा कि डॉक्टर गुप्ता साहब का वक्तव्य हमने कल शाम को सुना, उसी समय हमें एनर्जी प्राप्त हुई, उसी समय हमें प्रेरणा प्राप्त हुई और हम हार्ट की बीमारी वालों से एकदम दिलवाले बन गए। ये जो दिल है, इस दिल की महिमा बहुत प्यारी बहुत न्यारी है। ये दिल आसानी से मिलता नहीं है, दिल देने वालों को दिल प्राप्त होता है, दिल मांगने वालों को दिल नहीं मिलता। मांगना छोड़िए, हम मांगना छोड़े तो हमें आप शिव भगवान शिव पावा सब प्राप्त कर देते हैं। हीलिंग शब्द हमारा है, हेल्थ से संबंधित है। हीलिंग शब्द एक मेडिकल साइंस का शब्द है जिसमें हीलिंग से प्राप्त हुआ है। हील मीन्स इट इज ए टर्म फॉर द मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस सिर्फ काम करता है हीलिंग करने का, एक्सटर्नल बॉडी का, एक्सटर्नल पार्ट्स का, एक्सटर्नल ऑर्गन्स का। लेकिन हम स्वस्थ जो होते हैं, हमारी भारतीय परंपरा में जो स्वस्थ शब्द है वो है जब हम स्वयं में स्थित होते हैं तब हम स्वस्थ होते हैं। तो ये स्वयं की स्थिरता लाने के लिए हमें परमात्मा के सिवाय कोई भी सहारा नहीं है। उसी की याद में हम स्थिर होते हैं, स्वयं में पहुंचते हैं वे उस गहराई में जहां याद आती है हमें उस परमात्मा की, तो हम स्वयं सोचते हैं कि हम क्या है। हमारा समय पूरा नष्ट हो जाता है दूसरों के बारे में सोच विचार करने का, लेकिन हमारे पास समय नहीं है स्वयं के बारे में कुछ सोच धारण करने का। हमारे पास स्वयं के बारे में यदि सोचने के लिए हम समय निकाले तो इतना खजाना हमारे अंदर में है, इतना खजाना है कि हम समझ जाते हैं कि हम क्या है, जिसका उपयोग हम तिल मात्र भी नहीं कर पा रहे हैं। वी आर पेइंग ऑल अवर अटेंशन टू ऑल अवर एक्सटर्नल एक्टिविटीज, कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी क्या बुराई है, किसका क्या अच्छाई है। स्वयं की तरफ देखिए, हमारे में अच्छाई में, डोंट गो फॉर द नेगेटिव साइड्स। हमारे में बुराई क्या है तो बाद में सोचिए, लेकिन पहले ढूंढिए हमारे में क्या क्या अच्छाइयां है। जब हम सोचते हैं कि हमारी अच्छाई का जब हमें पता चलता है तो परमात्मा हमें दूसरा की अच्छाई तुरंत जानने की प्रेरणा देता है और दूसरों के बारे में अच्छी सोच का निर्माण वो कर देता है। प्रेम, शांति, शक्ति, भक्ति, ज्ञान, पवित्रता उसी के प्यार से, उसी के प्रेम से, उसी के स्रोत से हमें प्राप्त होती है, जिसका इस्तेमाल हम स्वयं के लिए और दूसरों के लिए उसकी याद करके स्वयं कर सकते हैं। मेडिकल साइंस काम करता है बाहरी शक्तियों का, बाहरी इलाज करता है वो हमारे ऑर्गन्स का, हमारे इसका, लेकिन मन की शक्तियों का इलाज करने के लिए तो हमारे पास आंतरिक शक्ति का निर्माण होना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है, जो कि हमें शिव बाबा से प्राप्त करती है यदि हम याद में रहे तो। मन में घाव होता है, कोई गहराई से बोलता है तो मन में वो बात चुभ जाती है। यदि आप तालाब की तरफ कभी घूमने जाए तो आप देखिए, एक पत्थर उठा के देखिए, तालाब में फेंकिए, तालाब में उनके वाली वो तरंगे एक बिंदु के ऊपर ड्रॉप होती है और उसकी तरंगे की लहरें किनारे तक पहुंच जाती है। आपने कभी मार्क किया होगा, चोट तो एक जगह पहुंचती है मन में, लेकिन उसकी तरंगे हमारे आत्मा तक पहुंच जाती है, जिसका इलाज हम बाहरी इलाज से नहीं हो सकता। बाहरी तरंगे जो एक चोट से घाव से अंदर चली गई है, उस तरंगों को जो उस गहराई को निकालने के लिए उस परमात्मा की ही अपार शक्ति की जरूरत, उसके प्रेम की जरूरत, उसकी पवित्रता की जरूरत, उसकी याद की जरूरत होती है। ये जो गहरे घाव, गहरी प्रेरणाएं, गहरी याददाश्तें, गहरी मेमोरी, जैसा कि आज गुप्ता साहब ने बताया था, हमारा मन भर जाता है सुरई जैसा, है ना, तो ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरफ्लो से फिर हार्ट के ऊपर भी फिक्स हो जाते हैं। वैसा ही हम यदि प्रेम के भाव में मन हमारा डूबा रहे तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन नाम के ऐसे हॉर्मोन्स क्रिएट होते हैं जो हमें प्रसन्नता पैदा करते हैं। हमारे टेंशन, डिप्रेशन ऑटोमेटिक कहां रफू चक्कर हो जाते हमें पता भी नहीं चलता। और जब हम हमारे गुस्से में आ जाते हैं या एंगर में आ जाते हैं, ये होता है तो हमारा एड्रेनलिन एकदम रिलीज करता है, कोर्टिसोल, एड्रेनलिन, ऑल दीज हार्मोन्स आर क्रिएटेड जो कि एकदम हार्ट का पंपिंग बढ़ा के ऑल हार्ट ब्लड प्रेशर एंड ऑल दीज थिंग्स चालू हो जाते हैं। क्योंकि एनर्जी की जरूरत होती है, यदि हम भयभीत है तो वी रिक्वायर एनर्जी फॉर फाइट और टू रन अवे, जिसको हम फाइट और दैट सिंड्रोम इज देयर। सो आप तो दोनों तरफ के लिए एनर्जी लगती है, जब आप गुस्से में हो या कोई भय में निर्माण हो तो दोनों के लिए एनर्जी लगती है, तो एनर्जी आएगी कहां से? वो दैट नेचर हमारा जो है वो कार्य करता है, एड्रेनलिन रिलीज करता है, हार्ट का पंपिंग बढ़ाता है, फिर एनर्जी जहां क्रिएट हो रही है। एनर्जी क्रिएट कैसी होगी? ब्लड का सप्लाई हमारे एक एक सेल में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गन टू रिलीज टू बर्न ग्लूकोज, और जहां ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन जरूरी है हार्ट के पंपिंग के लिए, तो हमारा एनर्जी क्रिएट हो जाएगा। और एनर्जी क्रिएशन बाय प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी क्रिएशन इज द फ्री रेडिकल, और वो फ्री रेडिकल जब आप क्रिएट हो जाएगा तो हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज में जाके, जैसा कि आज ही डॉक्टर साहब ने बताया है, गुप्ता साहब ने, कि जाके आर्टेरियल वॉल को वो डैमेज करेगा, जहां डैमेज हो गया कोलेस्ट्रॉल, फैटी फ्लेक्स एंड ऑल दीज थिंग्स, वहां ब्लॉकेज बनना 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 शुरू हो जाएंगे। और आपने स्वयं में देखा है कैसे ब्लॉकेज बन जाते हैं, तो मन में डर निकाल के प्यार की गंगा बहाइए, और प्यार और प्रेम से ही मनुष्य जीत सकता है और ये सब चीजें खत्म हो सकती है। प्यार जहां हो, प्रेम जहां हो, उत्साह जहां हो, स्माइल, मैंने यहां पढ़ा है कहीं तुम्हें देखा हुआ, स्माइल इज द योर फेशियल स्माइल इज द एक्सप्रेशन ऑफ योर इंटरनल प्लेजर। जब मुस्कान चेहरे में रहती है तो हमारी आंतरिक प्रसन्नता प्रकट हो जाती है, और यदि आप मुंह फुला के किसी से बात करेंगे तो हो सकता है वो आदमी आपसे बात नहीं करे और आपको भी अच्छा नहीं लगे, प्लेजेंटनेस कहां गायब हो जाती है। इसलिए चेहरे पे मुस्कान प्यार से ही आती है, और प्रेम ही बांटते रहेंगे हम तो जीवन में आनंद ही आनंद आता रहेगा, हम टेंशन में नहीं रहेंगे। जानवर को कभी टेंशन नहीं होता, टेंशन तो हमें ही होता रहता है। कुत्ता तो कुत्ता है, उसको कहकर टेंशन है, भूख दिया चला गया, लेकिन हम यदि कुछ आदमी कुछ कहे हमारे ऊपर, भोग दिया किसी ने या कोई गलत शब्द कह दिए, तो हमारे मन में हो जाके फिट हो जाता है, एंड दैट मन जो आंतरिक गहराई में जो घाव होता है वो आसानी से नहीं निकलता, उसमें परमात्मा की शक्ति और प्यार की ही जरूरत होती है। उस प्यार को प्राप्त करने के लिए हमें उस भगवान का ही सहारा लेना है, और उस सहारे की वजह से ही हम जी रहे हैं। सदा बाबा की याद में रहे हम प्रसन्न ही प्रसन्न रहेंगे। हमारा तरफ हार्ट डिसीज क्या, कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज आप ही आप निकलते जाएगा। स्मरण करो, रेज आएंगी, वाइब्रेशन आएंगी, किरणें जाएगी, सर्टन प्रोसेस है जो हम सीखेंगे अभी, हाउ टू रिलीज एंड डिसॉल्व द ब्लॉक्स इन द बॉडीज, हाउ टू रिमूव द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स फ्रॉम द बॉडी फ्रॉम द हार्ट। तो ये सब चीजें सीखने की है, करने की है, मन में की है। मन में जो धारणा बन जाती है तो मन की साइकोलॉजी बड़ी, मन तो साइकोलॉजी का मामला है। हमारे मन में जो भी विचार ऐसे प्रकट हो जाते हैं, धारणा बन जाती है कि मैं नहीं हूं। एक बार ऐसी घटना हुई, मुझे याद आई है अभी, एक व्यक्ति था वो अपंग था, उसको पैरालिसिस हो गया था, ये घर की झंझटेबाजी हो रही थी, बिकॉज ही वॉज ए वेरी रिच मैन, लेकिन ऐसे कुछ आ गया उसके बिजनेस में ताकि उसको थोड़ा सा कठिनाइयां चालू हुई। अब वो उसकी स्टेज ऐसी आई कि वो बाजार में जाने से मुंह मोड़ने लगा, वो चाहता था कि मेरे पास कोई ना आए ना पूछे मुझे, क्योंकि भाई क्या हो रहा है, बाजार में जाएंगे तो पैसे मांगेंगे, उधार मांगेंगे, व्यापारी लोग आएंगे। तो उसने जाना, मन में ठान लिया कि मैं घर के बाहर नहीं निकलूं। जब वो घर के बाहर निकलना बंद हो गया तो उसके मन में और गांठें पड़ती रही कि मैं तो अपंग हो गया, मैं तो चल नहीं सकता, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा करते करते उसको इमीडिएटली एक बार बाथरूम में गया, बाथरूम में फिसल गया। बहाना चाहिए बीमारी को कुछ, तो मन को तो बहाना ढूंढता है, मन हमेशा बहानेबाजी बहुत करता। जब मन को बहाना मिल गया बाथरूम में फिसलने का, फिसल गया और उसने ठान लिया कि अब तो मैं बिल्कुल चल नहीं सकता। तो मनुष्य जब चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बीमार हो जाता है तो अपेक्षा करता है किसी के सहानुभूति की। तो घर में सबसे प्रिय सहानुभूति देने वाली सबसे हमारी अर्धांगिनी होती है उससे सबसे ज्यादा प्राप्त सहानुभूति होती है। और अर्धांगिनी जब बीमार पड़ती है वो मनुष्य से भी ज्यादा सहानुभूति की अपेक्षा करती है मिस्टर से कि मेरे पास आए पूछे क्या हो गया है आपको। तो ये सहानुभूति का खेल मन के साथ चलता रहता है। तो उस व्यक्ति ने ठान लिया कि मुझे कोई नहीं पूछे कुछ नहीं हुआ तो वो बाजार जाने से ही अब उसको सहानुभूतियां प्राप्त होने लगी। जिन लोगों के पैसे उसके ऊपर में थे तो वो मांगना भूलेंगे, बेचारा गरीब है बेचारा अपंग हो गया कहां से देगा, जब ठीक होगा तो हम देखेंगे नहीं होगा तो उल्टी अपन मदद करेंगे। तो उसको सहानुभूति बटोरने में वो लग गया। जब एक दिन उसके घर में क्या हुआ, आग लग गई। जब आग लग गई तो घर के सब लोग भागने लग गए, सब लग गए। बाद में ख्याल आया अरे वो तो अंदर में ही बैठे है, आग लग गई कैसा निकाले। तो ये महाराज क्या हुआ, जो आदमी चल नहीं सकता था वो आदमी आग देखकर एकदम चलने फिरने लग गया और दौड़ते हुए निकल आ रहा था। तो घर के वालों ने बोला अरे ये दादाजी तो चलने लग गए। जैसे उसके मन ने सुना कि ये चलने लग गए धड़ाम के वहीं गिर गए। ये काय का खेल है, ये मन का खेल है। मन में ठान ली ही ऐसा होना है तो मन बोलेगा कि ऐसा करना है, मन बोलेगा कि मैं प्रसन्न हूं मुझे कोई कोरोनरी ब्लॉकेज नहीं है, ये बाबा की शक्ति से सब निकल जाएगा। मन ठा हो गया, ब्लॉकेज डिजॉल्व हो गया। ओम शांति।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब।
ओम शांति। आदरणीय दादी जी, मैं दादीजी की एक विशेषता आपको बताऊं। दादीजी का नाम तो वैसे मनोहर इंदिरा जी है और दादीजी की एज अभी 85 से भी अधिक हो चुकी है। और दादीजी की एक मैं दादीजी को शायद 7 साल पहले दी थी। कितने बजे हुआ, कितने साल पहले हुआ था फ्रैक्चर कमर में, कितने साल हो गए फ्रैक्चर हुए कमर में, फ्रैक्चर हुए स्पाइन में, जब रशिया गए थे आप कितने साल हो गए, 6 साल हो गए। तो दादीजी रशिया गए थे, रशिया के टूर पे गए थे। तो आते टाइम दादीजी को ऐसा स्पीड ब्रेकर होता है ना, तो गाड़ी रात में आई तो दादी का स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया है ना, वो गाड़ी अचानक उछली ना तो स्पाइन पे फ्रैक्चर हो गया। किंतु मैं देखा 6 साल में दादी जी कभी भी स्पाइन का फ्रैक्चर किसी और को हुआ होता तो वो आदमी बिस्तर से उठता नहीं था। पर दादी जी हमारे इतने एक्टिव हैं, इसके बावजूद दादी जी ज्ञान सरोवर हमारी अकेडमी है, अकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड, वहां की डायरेक्टर हैं। और दादी जी को हम, दादी ऊपर होते दादी को हम, मैं फोन कर दादी जी आप आज दिल वालों से मिलने आएंगे, हाँ दादी आ जाते हैं, फिर दादी शाम को मिलके वापस भी चले जाते हैं और कई बार तो मिलके तुरंत भी चले जाते हैं। तो पहाड़ के रास्ते में आना जाना दादी कभी भी, मैं देखा जरा भी इनके मन में ये फीलिंग नहीं होती कि मेरे को कमर की तकलीफ है। नहीं तो दूसरा व्यक्ति तो मैं समझता हूं, मैंने देखा बहुत सारे जिनको स्पाइन का फ्रैक्चर होता है वो बिस्तर से उठते ही नहीं। तो ये है राजयोग की विल पावर है कि इतना सब होने के बाद भी हमारी दादियां और जो भी राजयोग हमारे भाई बहन हैं जिनकी तकलीफें शरीर में होती है, फिजिकल तकलीफें होती हैं बॉडी में, शरीर है तो तकलीफें भी हो सकती हैं, किंतु उसके बावजूद भी हमारे मन में कितना उमंग उत्साह होता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, है ना। तो आप दादी से सुनेंगे, किंतु उससे पहले मैं चाहूंगा सिर्फ एक दिल वाला आए। अच्छा दिल वाले जो सेवा के, आप तो सभी नए दिल वाले हैं, किंतु पुराने दिल वाले भी हमारे पास आते हैं जो नए दिल वालों की सेवा करते हैं। तो पुराने दिल वाले सामने आ जाएं, जो जो पुराने दिल वाले आए ना सामने आके दर्शन दें कि नए दिल वालों की सेवा करने के लिए कौन कौन आए। इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, पुराने दिल वाले सामने आ जाओ। तो ये पुराने दिल वाले हैं जो कि जिन्होंने अभी हम हर रूप में 5-6 बुलाते हैं ताकि वो ही आपकी सेवा करें आकर के। आज सामने आ जाइए, इधर आ जाओ, सामने सामने सामने। दादी जी ये पुराने वाले मतलब जिनकी जिन्होंने राजयोग से अपनी बीमारी ठीक की है ना। हाँ जी, तो चेहरा उनकी तरफ दिखाओ, उनके पहले उनको दिखाओ, दिल वालों को दिखाओ। तो कितने हैं दिल वाले, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 दिल वाले पुराने वाले आए हैं ना। तो ये दिल वाले आपकी सेवा करने के लिए आए हैं ना, तो आपका दिल ये सब ठीक करने कर देंगे। जो भी बात हो आप इनसे भी पूछ सकते हैं, ये भी आपकी तरह से ठीक हुए जैसे आपकी तरह पहली बार आए थे और इन्होंने राजयोग से डाइट से एक्सरसाइज से अपने आप को ठीक किया है। तो ये भी आपके सामने रहेंगे, इनके भी बहुत सारे बहुत सबके आप अनुभव सुनेंगे। एक का तो आपने भी सुना ना, एक का अनुभव मैं और सुना देता हूं। तरुण भाई आप सुनाएंगे अपना अनुभव, अभी अभी सुनाएंगे, नहीं अभी सुनाओ। तरुण भाई को माइक दीजिए, तरुण भाई अपना ब्रीफ अपना अनुभव सुनाएंगे, अपना नाम अपनी उम्र क्या काम करते हैं कैसे हार्ट की प्रॉब्लम हुई। बाकी फिर आपको सबको पर्सनली मिलाएंगे, ठीक है? बैठ जाइए, बाकी दिल वाले बैठ जाइए प्लीज अभी, है? सबके अनुभव सुनते रहेंगे आप। अभी तरुण भाई का अनुभव सुन लीजिए, तरुण भाई बेबी है दिल वालों में, है ना?
ओम शांति। मेरा नाम तरुण है, मैं बड़ौदा में रहता हूँ, मेरा आइसक्रीम इंडस्ट्रीज है,
आइसक्रीम का बिजनेस है,
आइसक्रीम फैक्ट्री है। तो मुझे मतलब ऐसे ही घर पे बैठे बैठे ही हार्ट में प्रॉब्लम हो गया था, 36 ईयर्स, और मुझे मतलब प्रॉब्लम हो गया तो ले गया गया था हॉस्पिटल में, ऑपरेशन की तैयारी थी फुल। जैसे ही मतलब प्रॉब्लम हुआ तो डॉक्टर ने बोला भाई घर वालों को डरा दिया, भाई ऑपरेशन करना पड़ेगा ये वो, तो उन्होंने ऑपरेशन की तैयारी कर दी थी। तो मुझे पता चला अंदर, तो मैं डॉक्टर गुप्ता जी को 10 साल पहले ही मिला हुआ था, जानता था कि ये भाई यहाँ पे चलता। तो मैंने बोला मुझे ऑपरेशन करवा ही नहीं भाई, अभी ये छोटी ये मतलब ऑपरेशन करवाने के बाद तो पूरा बॉडी खत्म हो जाता, ऑपरेशन नहीं करवा, कोई नेचुरल ट्रीटमेंट पता था गुप्ता जी करते हैं। तो मैं सीधा ही यहीं आ गया। मैं 8 अगस्त को मतलब हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था और 19 अगस्त को मैंने कैंप में ज्वाइन किया था, 15 को यहाँ आ गया था वापस डॉक्टर से मिलने के लिए। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल एकदम स्वस्थ है, वही मेडिटेशन करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देखो इनकी युगल भी है, इनका इनके सामने वो भी आओ, युगल और इनके बच्चे भी सामने आओ, जल्दी देखे वो भी देखे ना इनको, कैसे सभी देखें, आओ सामने आओ, दोनों बच्चे भी सामने आओ, दोनों बच्चे भी सामने। ये तरुण भाई की युगल और उनके दोनों बच्चे है ना, ये भी सामने, ये भी साथ में, पूरा परिवार देखो आपकी सेवा के लिए आया है अभी ना, ताकि आपकी भी तबीयत ठीक हो जाए। देखो ये एक एक प्रोग्राम में आए थे, उसके बाद लगातार आते ही रहे हैं। हमारी अगले महीने कॉन्फ्रेंस थी सेप्टेम्बर में, अगस्त में पहली बार आए थे, तो सितंबर में उन्होंने कहा नहीं मैं सेवा करने के लिए आऊंगा, सेवा सितंबर कॉन्फ्रेंस में पूरी सेवा की, फिर जब से आते ही रहते रेगुलर, है ना, पूरा रेगुलर। उनको अभी तकलीफ क्या होती है पता ही नहीं है, हार्ट की तकलीफ क्या होती है ना, सचमुच एक एक अगर आप सिंसियर 7 दिन प्रोग्राम अटेंड करेंगे तो आपकी ब्लॉकेज क्या होती है, हार्ट की बीमारी क्या होती है, डायबिटीज क्या होती है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कमर का दर्द क्या होता है, सिर का दर्द क्या होता है, आप भूल ही जाएंगे।
आदरणीय दादी जी, अपने बाल्यकाल अवस्था से ही राजयोग का अभ्यास कर रही हैं, आपको बाप दादा की साकार पालना का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय दादी जी, वर्तमान समय में ऊपर माउंट आबू में एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड ज्ञान सरोवर की आप डायरेक्टर हैं। जैसा कि दादी जी का नाम है, दादी जी जब बोलती हैं, मुस्कुराती हैं, तो वैसा ही उनका गुण झलकता है, मनोहारी गुण है। दादी जी का नाम भी है दादी मनोहर इंदिरा जी, तो वैसा ही उनका बोल व्यवहार आप अभी भी देखेंगे, सुनेंगे, आपको महसूस होगा। तो ऐसी दादी जी हम सबके बीच हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं अपनी दादियों को पाकर, जिन्होंने हम जो बाद में आने वाली जनरेशन के सामने एक प्रत्यक्ष सबूत रखा है, वो निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा शिव, जो किसी को दिखाई नहीं देते, लेकिन कैसे उन्होंने इन बच्चियों को अपनी अनुभूति कराई। बाल्यकाल में एक छोटा बच्चा आज माँ बाप से अलग नहीं होना चाहता, और ऐसे समय में ये अपने लौकिक माता पिता को छोड़ बाबा के पास जो आना है, और इतना लंबा अरसा समय जो इन्होंने गुजारा है, वो हम सबके लिए एक दर्शनीय मार्ग बन गया है। तो इससे हम सबके लिए मार्ग बहुत सहज हो गया है। हालांकि कुछ कठिनाइयां आती हैं, तो वो कठिनाइयां जो हमारी दादी ने अपने जीवन में फेस की, वो कठिनाइयां भी हमारे लिए ज्योति का कार्य करती हैं। तो हम दादी जी के आशीर्वचनों का लाभ उठाएंगे, क्योंकि अनुभवी आत्माएं हैं, चाहे साधारण बोल भी से भी हमारा जीवन परिवर्तन हो जाता है। तो मैं आदरणीय दादी जी से विनती करती हूँ कि हम सभी दिल वालों के लिए जो बाबा के घर में सफा लेने आए हैं, आप उनके लिए आशीर्वचन कहेंगे।
ओम शांति। प्यार से बोला सभी ने, ओम ओम शांति शब्द में बहुत बड़ी शक्ति है। शांति बोलते हैं ना, तो बोलते ही मन सबका शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है। तो हम बाबा के बच्चे हैं, रूहानी हॉस्पिटल में पहुंच गए हैं। ये हॉस्पिटल डबल काम करती है, देह का भी काम करती हैं तो आत्मा का भी काम करते हैं। आत्मा को भी शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, पवित्रता चाहिए, प्रेम चाहिए। तो इस स्थान पर आते ही अगर हम साधन का कोर्स करते हैं ना, तो कोर्स में बहुत कुछ फोर्स आ जाता है। अनेक प्रकार की जो अंदर की बुराइयां हैं, जो छिपी हुई होती है, मालूम नहीं पड़ती है, दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। परंतु ज्ञान और योग की धारणा से बुद्धि इतनी क्लियर हो जाती है, जो हमको हमारे को हमारी बुराइयों का भी पता लगता है और हम सहज ही अपनी बुराइयों को भगा सकते हैं। बुराइयों की पालना नहीं करते, बुराइयों को भगा देते हैं सदा के लिए, कि फिर वो हमारे पास आवे ही नहीं। तो हम सब ने तो इस हॉस्पिटल से यही सीखा है कि पढ़ो और पढ़ाओ, करो और कराओ, परंतु जो कुछ करो और कराओ वो दूसरों के भले के लिए हो, सबका भला हो जाए, सबके जीवन की ज्योति जगी रहे, सबके अंदर की ज्योति जगी रहे और विकारों का अंश भी न रहे, ऐसा हम सब इस राज्य के अभ्यास से सीखते हैं, करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आप सब आए हैं, यहाँ पर आए हैं अपनी हेल्थ के लिए आए हैं, लेकिन हेल्थ के साथ साथ आपको सब कुछ मिलेगा, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। फिर कुछ रहा, हेल्थ भी आ गई तो वेल्थ भी आ जाती है, और उसके बाद हैप्पीनेस। जिसके पास हैप्पीनेस है उसके पास मानो सब कुछ है, वो सदा खुशी में रहते हैं ना, उसको खुशी जैसा खजाना ही नहीं है, गमत जैसा रोग नहीं और खुशी जैसा खजाना नहीं। जिसके पास खुशी है वो सदा खुश में रहता है, इसके कारण उसको देख करके दूसरे भी खुश हो जाते हैं। तो मैं आप सबका बाबा के घर से स्वागत भी करती हूँ और आशा करती हूँ कि जैसे आप इस हॉस्पिटल से रूहानी शिफा पा रहे हो, ऐसे आप दूसरों को भी रास्ता बताते रहेंगे, दूसरों को भी सच्ची राह दिखाते रहेंगे और उनको भी अनुभवी बनाने के लिए कभी कभी अपने साथ यहाँ सैर कराते कराते ले आएंगे, तो देखेंगे ना इतनी बड़ी हॉस्पिटल है, वहां से फिर कैसी शिफा मिलती है वो भी उनको अनुभव में आ जाएगा। तो मैं आप सबका हार्दिक स्वागत भी करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ कि आप ऐसे समय पर अपना कीमती टाइम निकाल करके आए हैं, तो आपको जो लाभ मिला है इस लाभ का दूसरों को भी फायदा हो। ओम शांति।
दादी जी ने संक्षिप्त शब्दों के अंदर बहुत ही आप सबको एक काम दे दिया है कि हम तो यहाँ आए हैं दूसरों का भी जीवन परिवर्तन। अगर आप सभी आज्ञा दे तो मैं दो मिनट में आपको एक ऐसी ही बात बताती हूँ, छोटी सी कहानी है, आप समझेंगे। वही चित्र दादी जी ने आपके सामने रखा है, इसीलिए मैं वो बात कह रही हूँ कि एक चित्रकार था और उसने सोचा कि मैं एक चित्र बनाऊं। गरीब भी था लेकिन वो एक ऐसा चित्र बनाना चाहता था, भोले भाले इंसान का चित्र। बहुत वर्षों घूमा लेकिन ऐसा इंसान उसको नहीं मिला। आखिरकार उसने एक बच्चे का, भोला भाला एक बच्चा मिला और उसको प्रार्थना की स्थिति के अंदर बिठाकर उसका चित्र बनाया। और जब वो चित्र को बेचने निकला तो वो बहुत धनवान हो गया, क्योंकि उस चित्र के बहुत उसको दाम मिले और काफी बिका वो उसका चित्र। फिर ऐसे काफी समय बीत गया, 15 वर्षों के पश्चात उसको फिर लगा कि अब मैं एक ऐसा चित्र बनाता हूं, इसके कंट्रास्ट में एक क्रूर व्यक्ति का चित्र बनाऊंगा। और अब वो उस क्रूर व्यक्ति की खोज में निकला, खूब घूमा, आखिरकार वो एक जेल में गया और उसको एक कैदी दिखाई दिया जो कि बहुत क्रूर था, बहुत कठोर था, दिख भी रहा था और उसका व्यवहार भी ऐसा था। तो उसने सोचा उस भोले बच्चे का चित्र देखकर कि हाँ, इसकी तुलना में ये चित्र सही रहेगा। और तो जैसे ही उस व्यक्ति ने जो कैदी था उस चित्रकार को देखा तो उससे कहा, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं एक चित्र बनाना चाह रहा हूं। तो उसने कहा, आपके हाथ में क्या है? तो उसने कहा, मेरे पास एक चित्र है और मैं ये चित्र के कंपैरिजन में चित्र बनाना चाहता हूं। ये भोले भाले बच्चे का चित्र, इंसान का चित्र, और मैं अब एक क्रूर व्यक्ति का चित्र बनाना चाहता हूं और मुझे उसके लिए आप सही लगे। तो उसने कहा, आपके हाथ में जो चित्र है वो आप मुझे दिखाएं। तो जैसे उसने उस बच्चे का चित्र उसके सामने किया तो वो कैदी दहाड़े मार मार कर रोने लगा। तो चित्रकार ने कहा, आप क्यों रो रहे हो? तो उसने कहा, ये मेरा ही चित्र है, मेरे बचपन का चित्र है। तो मैं आज अपने बचपन का जीवन देखता हूं और आज मैं अपना ये लाइफ देखता हूं जो आज मैं बन गया हूं, तो मुझे अपना बचपन का चित्र देखकर और आज अपनी जो मैंने इतने वर्ष जो करने की बुरी संगत का प्रभाव जो पड़ा कि मेरा जीवन आज क्या हो गया है, ये देखकर मुझे अपना जीवन पर तरस आ रहा है। और आज इस मेरे बाल्यकाल रूप ने मेरे फिर से मेरा बाल्यकाल जागृत कर दिया है, तो इसलिए मैं रो रहा हूं। तो उस बाल्यकाल के उस चित्र ने उसके जीवन में फिर से तब्दीली लाई और फिर से उसने अपने क्रूर जीवन, जो कठोर जीवन था, उसको परिवर्तन कर अपना फिर वही भोला भाला रूप इख्तियार किया। तो यही आज हमारा हाल है। हम जब इस संसार रूपी नाटक में जब अपना नाटक प्ले करने आए थे तो बहुत ही भोले भाले इंसान थे जिसमें किसी तरह का छल कपट नहीं था। वो हमारा रूप था, दैवी रूप, जिसकी आज भी इतनी पूजा हो रही है। और समय का फेर चलते चलते, क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है, यहां आकर आज हम कितने मैले हो गए हैं। आज हमारा ये क्रूर रूप राक्षस से कम नहीं है। हम छोटी छोटी बातों में झगड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते। तो वही चित्रकार जो कभी हम गीत गाते थे, वो चित्रकार की ये कला है, तूने खूब घड़ा भगवान खिलौना, तो क्या ये खिलौना माटी का है ना? फिर से वो चित्रकार फिर से आज हमें असुर से क्या बना रहा है? सुर बना रहा है, मनुष्य से देवता बना रहा है। वो कला हमें सिखा रहा है। तो वो रंग अब हम अपने जीवन में भरें, तो आत्मा में भी नूर आ जाएगा और ये प्रकृति भी जो बेनूरी हो गई है उसके अंदर भी नूर आ जाएगा, तो वसुधैव कुटुंबकम इस जीवन में आएगा। तो क्यों ना हम इस राजयोग की कला जो स्वयं परमात्मा शिव हमें सिखा रहे हैं, इस कला को जरूर अपने जीवन में सीखें और अच्छी तरह से इसे सीखें, गहराई से इसे सीखें, कहीं कोई कमी इसमें ना आ जाए। वो रंग हमें अपने जीवन में भरना है। हम एक दूसरे की नाक देखें, अपने जीवन में रंग भरें, जैसे उस कैदी ने अपने जीवन को चेंज किया, किया ना चित्रकार ने काम, तो वो तो परमात्मा जो पूरे दुनिया का चित्रकार है। तो अभी हम फिर से गीत बजेगा, बाबा की याद में बैठेंगे साइलेंस में।